आगे बड़ी प्यारी एनालॉजी आ रही है दुनिया की हकीकत की, 20 से 29, 20 से 29, अल्लाह दरगुजर करने वाला कदरदान है। मन का ना युरीदो हर सल आखिरा, अब हमारा तो इरादा बन गया ना आखिरत का, आखिर हम माशाल्लाह 25वें पारे पे आ गए, तो सुनिएगा। जिसका इरादा आखिरत की खेती का हो, हम इसे इसकी खेती में तरक्की देंगे, और जो दुनिया की खेती की तलब रखता हो, हम इसे इसमें से ही कुछ दे देंगे, ऐसे शख्स का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। यह है वो बात जो दूसरे पारे में, रब्बना आतिना फिर दुनिया हसना व फिर आखिरा हसना थी। ये वही बात है जो 15वें पारे में सूरत बनी इसराइल में मन जुरीदुल आजिला की बात पे थी कि दुनिया जल्दी आ लिए, और यहाँ अल्लाह ने एक ऐसी खेती की मिसाल आपको मुझे देकर समझा दी है जिस पॉइंट पे बात करते हैं। आयत 21, क्या इन लोगों ने ऐसे अल्लाह के शरीक मुकर्रर कर रखे हैं जिन्होंने ऐसे काम दीन मुकर्रर कर दिए जो अल्लाह के फरमाए हुए नहीं है। देख लीजिए, देखिए कुरान की सिर्फ आयतों का तर्जुमा देख लें, मेरे एक भी कमेंट आप सारा ना लें, सब निकाल दें, सिर्फ जाकर सूरत शुरा का तर्जुमा ग्लासेस उतार के पढ़ लें, अपने मसलक जमात फिरके गिरोबंदी के पुराने इल्म के बाप दादा से किए हो रहा है, जब से पैदा हुए घर में तो यही हो रहा था, हम तो उसी जमात से हैं, हम उसी से, ये सारे ग्लासेस को उतार के 15-20 मिनट के साइड पे रख दें और सिर्फ इन आयतों का तर्जुमा पढ़ लें और दुआ कर लें इहदिनस सिरात अल-मुस्तकीम, अल्लाह दिल खोल दे, रब्बि इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, मेरी तो बात ही ना सुने, मत सुने, कहा करें अल्लाह हमें ये गुमराह ना कर दें अगर इनका अकीदा गलत है। आप अल्लाह से खुद पूछिए अल्लाह क्या कह रहा है कि अपनी बातों को अल्लाह का दीन बनाकर प्रवेश करते हैं। हर बात लोगों ने कुरान से ही साबित की है, हदीस से ही साबित करते हैं, हर एक कहता है हम कुरान सुन्नत की बात करते हैं। अल्लाह कहते हैं अगर फैसले के दिन का वादा ना होता तो अभी ही इनमें फैसला कर दिया जाता, यकीनन इन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। आप देखेंगे कि ये जालिम अपने अमाल से डर रहे होंगे जिनके बवाल इन पर वाक़े होने वाले हैं, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए वो बहिश्तों के बागात में होंगे, वो जो ख्वाहिश करेंगे अपने रब के पास मौजूद पाएंगे, यही है बड़ा फजल। अल्लाह हमें दुनिया में अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के दीन के ताबे करने वाला बना दे, यही वो है जिसकी बिशारत अल्लाह ताला अपने इन बंदों को दे रहा है जो ईमान लाए और सुन्नत के मुताबिक नेक अमल किए। तो कह दीजिए कि मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं चाहता मगर मोहब्बत रिश्तेदारी की, और जो शख्स कोई नेकी करे हम उसके लिए इसकी नेकी में और नेकी बढ़ा देंगे, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और बहुत कदरदान है। क्या ये कहते हैं कि पैगंबर ने अल्लाह पर झूठ बांधा है? अगर अल्लाह चाहे तो आपके दिल पर मोहर लगा दे, और अल्लाह ताला अपनी बातों से झूठ को मिटा देता है और सच को साबित रखता है, वो सीने की बातों को जानने वाला है, वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है और गुनाहों से दरगुजर फरमाता है, और जो कुछ तुम कर रहे हो सब जानता है। ईमान वालों और नेकुकार लोगों की सुनता है और इन्हें अपने फजल से और बढ़ा कर देता है, और मुनकरीन के लिए सख्त अजाब है। अगर अल्लाह ताला अपने सब बंदों की रोजी फराख कर देता तो वो जमीन में फसाद बर्पा कर देते, लेकिन वो अंदाजे के साथ जो कुछ चाहता है नाजिल फरमाता है, और वह अपने बंदों से पूरा खबरदार है और खूब देखने वाला है। इस आयत को नोट कीजिए, 27 शुरा। मैं एक सवाल करूँ बल्कि एक एक्टिविटी है, किस किस का दिल करता है कि वो अरबपति हो? मुझे हैरत है जिनका दिल नहीं करता, मेरा तो करता है, मेरे दोनों हाथ खड़े हैं, दोनों हाथों से कहती हूँ मेरे पास अरबों रुपया हो, लेकिन क्यों नहीं मिलता? फिर अल्लाह ने जवाब लिख दिया, दौलत में कोई बुराई नहीं है, बट दौलत के साथ जो जरासीम है ना वो बड़े जानलेवा हैं। यहाँ अल्लाह ने एक जरासीम लिखा, अल्लाह बगाऊ फिल अर्थ, बगावत आ जाती है, ट्रांसग्रेशन, सरकशी, नोटों की वो सलामियाँ देते हैं, फेंकते हैं ऊपर से, वारते हैं गटरों में, पाइपों में जाते हैं नोट, कोई बात नहीं थी शादी का मौका है, ये गड़बड़ है। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? देखिए आपको अभी तो बता रही हूँ, पहाड़ों की तहों में सोना चांदी रखा हुआ है, लेकिन बंदा आपे से बाहर हो जाता है, हम में से हर एक का कैलिपर है। आपके मेरे ईमान के साथ हमारे माल का ताल्लुक है, कुछ लोगों को अल्लाह माल दे देना तो वो तो मुर्तद हो जाए, और कुछ को अल्लाह गरीब कर देना अगर तो वो भी दीन छोड़ दे। बंदा जितना जितना कीमती होता है ना अल्लाह उसको उतना ज्यादा देता है उस लिहाज से। तो यहाँ इस आयत से बस ये दुआ करें कि अल्लाह अगर तूने हमें माल दिया ना तो हमें बगावत से बचाना, और अगर नहीं दिया तो हमें अल्लाह हौकों से और मतहसरतों से बचाना। कोई बात नहीं, हमारी मासियों को तो देखिए वो कितने में गुजारा करती हैं, आप ही के हाथ से लेके जाती हैं हर महीने, और आप बार बार उनको कहती हैं और कितना मांगोगी और कब तक लोगी, तो तो ये बहुत ही प्यारी आयत है इस्लाम के माल के नज़रिए को समझने और समझाने की। आगे देखिए आयत 29, और वही है जो लोगों के नाउम्मीद हो जाने के बाद बारिश बरसाता है और अपनी रहमत फैला देता है, वही है कारसाज और काबिले हमदोसना, और इसकी निशानियों में से आसमान और ज़मीन की पैदाइश और इसमें जानदारों का फैलाना है, और वो इस बात पर भी कादिर है कि जब चाहे इन्हें जमा कर दे। तो क्या पता चला आयत 20 पे फ्लो चार्ट, सहाबा कराम आखरत के हरीस थे कि दुनिया के? मन का न यूरीद हरसद दुनिया थे या हरसल आखिरा? उनकी ज़िंदगी हरसल आखिरा पे थी, आखरत के तसव्वुर पे जीते थे वो। दुनियावी काम हो या दीनी, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करते थे, अपनी नीयतों को हर तरह के खोट से पाक रखते थे। दुनिया की इस ज़मीन पे आखरत के फल लगाते थे। मोमिन बीज इधर डालता है, फल आखरत में जाएगा। कहते हैं ना कि बीज डाले दादा और आम खाए पोता, गुठली दादा डालता है, एक नस्ल को तो मिलता ही नहीं आम, फिर आगे जाके पोतों को मिलेगा। आखरत का भी हाल है। मिसाल दूँ, आप ऑर्डर करते हैं, इधर डिलीवरी कहीं और से मिलती है, कई चीज़ें हैं वो सिर्फ आपको डिलीवरी देते हैं, आप वहाँ जाके ख़रीद नहीं सकते। आप ड्राइव थ्रू में कभी गए? एक दफ़ा जब गुजर के ऑर्डर देने वाली जगह से, तो आगे से आप जाके गए कुछ और, दो कहेंगे वापस जाकर ऑर्डर प्लेस करें, हमारा कंप्यूटर उधर रखा हुआ है। इस दुनिया में वी आर प्लेसिंग ऑर्डर्स, ये भी डाल दो, ये भी ठीक है, अच्छा ये, अच्छा ये साइड्स डाल दो, ये कर दो, वो अच्छा, चलो कुछ और एक्स्ट्रा ये भी, और पे कर रहे हैं अपनी नेकियों की सूरत में। डिलीवरी मिलेगी या यतुहन नफ्सुल मुतमईना इर्जीला रब्बी की रादियत मर, डेथ बेड पे डिलीवरी मिलना शुरू हो जाती है मोमिन को। हदीस में कि मोमिन जब दुनिया से जाता है तो उसके जिस्म पे एक दाग धब्बा भी नहीं होता, बस वो प्यार से मोहब्बत से जान निकालने वाले फरिश्ते आते हैं और ले जाते हैं। तो क्या पता चला अल्लाह ताला की सहाबा कराम को जो खुशखबरियाँ थी वो क्यों थी? क्योंकि नबी सल्लम की दावत पे फौरी लब्बई कहने वाले थे। हम क्या कहते हैं आखिर में, देख लो सब, देख लो क्या करते हैं, फिर मैं भी कर लूँगी। आखिरी तारीख पे बिल जमा कराने वाली कौम है हम, माफ़ करें मुझे आप सब, हम कुरान पढ़ने आए थे, इन्होंने हमें क्या इन्हें दे दिया तुम्हें। आप एक बच्चा पाकिस्तान में पैदा करें और एक बाहर करें, अगर मुमकिन है तो, यकीन करें दोनों बच्चों की साइकिक में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होगा। उन्होंने जो देखा और इन्होंने जो देखा, ये तो इनकी तो आपस में कोई वेवलेंथ भी नहीं मिलनी, जोड़ जिधर को होता है वहीं सजता है। तो बहरहाल आगे चले, तो अल्लाह के नबी के सहाबा कौन थे? पहली पुकार पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। दूसरी वजह क्या थी? क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाले बने। अगली बात थी क्योंकि वो कुफर और शिर्क के अंधेरों से निकलने वाले बने और अमल सालेह करने वाले बने, अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे। आई 25 पे एक हदीस है सही मुस्लिम की 6955, अल्लाह अपने बंदे मोमिन की तौबा से खुश होता है। वो ये हदीस ज़हन में ले आई है जो एक ऊँट के ऊपर सामान गुम गया और फिर मिल गया और कहा कि रब तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब हूँ। कुफर का जुमला है, पर अल्लाह को पता है कि इसकी नीयत क्या थी, तो अल्लाह को उससे ज़्यादा खुशी होती है जब उसका भटका हुआ बंदा हिदायत पे आता है। शायद आप में से ही कोई ऐसा हो, हर साल मैं कहीं भी जाऊँ ना तो मेरे मुँह से एक जुमला निकल जाता है, शायद मुझे किसी एक के लिए बुलाओ, यानी एक बंदा भी आ जाता तो मैंने दौरे कुरान करा देना था अल्लाह की रहमत से। जी आई 26 में चूँकि दुआओं की और तौबा की बात थी, तो नोट कीजिएगा, एक फ्लो चार्ट है हमारे सामने, किन की दुआएँ कबूल होती हैं। नंबर एक, जो सच्ची तौबा करके अल्लाह की तरफ रजू करें, जो अल्लाह ताला की खातिर हर अच्छा काम करें, जो दूसरों के लिए भी खैर ख्वाही का मामला करें, अल्लाह हमारी भी तौबा कबूल फरमाए। अल्लामा इन्ना कफुबुन तुहिब्बुल अफ़्फ़ा फ़ाफ़ू अन्नी। क्या सीखा? ईमान लाना है, नेक अमल करने हैं, भलाई कमानी है, तौबा करनी है, रोज़े महशर जमा किए जाने पर यकीन रखना है, ज़मीन व आसमान में मौजूद निशानियों पर गौर व फिक्र करना है। आगे आयत नंबर 30 से 43, अल्लाह के सिवा कोई हामी व मददगार नहीं, वमा असाबकुम मिन मुसीबा, तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुंची हैं वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूत का बदला है, और वो तो बहुत सी बातों से वो दरगुजर फरमा देता है, और तुम हमें ज़मीन में आजिज़ करने वाले नहीं हो। तुम्हारे लिए सिवाय अल्लाह ताला के ना कोई कारसाज़ है और ना मददगार, और दरिया में चलने वाली पहाड़ों जैसी कश्तियाँ इसकी निशानियों में से हैं, वो जो बादबानी कश्ती है ना, कल आलाम उसके लिए आया है। अगर वो चाहे तो हवा बंद कर दे और ये कश्तियाँ समंदरों पर रुकी की रुकी रह जाएं। यकीनन इसमें हर सब्र करने वाले शुक्रगुजार के लिए निशानियाँ हैं। या इन्हें इनके करतूतों के बायस तबाह कर दे, वो तो बहुत सी खताओं से दरगुजर फरमाया करता है। और ताकि जो लोग हमारी निशानियों में झगड़ते हैं मालूम कर लें कि इनके लिए कोई छुटकारा नहीं, तो तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो जिंदगानी है दुनिया का कुछ यूं ही सासबाब है। ज़रा सी इस पर एक्टिविटी करते हैं, जो कुछ इसको हाईलाइट कर लें, जाकर अपनी इन्वेंट्री बनाइए, क्या क्या दिया गया आपको, अपनी फेवरेट चीज़ें देखें, मनपसंद चीज़ें जो आप कहते हैं मैं किसी को हाथ न लगाने दूं कभी, छेड़ा क्यों, टच क्यों किया, ये है जो कुछ दिया गया। आगे हकीकत क्या है, ये दुनिया की ज़िंदगी का कुछ यूं ही सा स्वभाव है, अल्लाह के लिए वो इतना बड़ा नहीं है। अब देखिए जो बंदा जिस स्टैंडर्ड की चीज़ लेता देता है ना, उसको वही अच्छी लगती है। ज़ाहिर है हर एक का एक लेवल होता है, कोई बुरी बात नहीं है। कोई इतवार बाज़ार से चीज़ लेता है, उसको इतवार बाज़ार में बड़ी अच्छी चीज़ें दिखती हैं। कोई वहाँ से निकलेगा तो हो सकता है किसी और इलाके में आ जाए, मैं नाम नहीं लेती, को बुरा ना माने, लेकिन छोटे बड़े इलाके तो हर मुल्क में होते हैं ना, हर शहर में होते हैं। हर एक का एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है, जो जहाँ लेता है ना वो कहता है वहाँ चलिए बड़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। अब एक बंदा जो पूरे पाकिस्तान की कोई बेहतरीन जगह का नाम सोच लें, यहाँ से निकले तो दुबई से शॉपिंग करता है, जो दुबई से ज़रा आगे गया तो यूके चला गया, वहाँ की करता है। मिसाल दे रही हूँ कि जो जितनी ऊंची जगह के शॉपिंग करने लग जाए उसको नीचे की चीज़ें जचती हैं। जो आला कपड़े पहनने लग जाते हैं ब्रांडेड, उनको लॉन और मोटी लगती है, उनको और चुभती है। वो कभी भी मिक्स कपड़ा नहीं पहनते, जो प्योर कपड़ा पहनते हैं वो रेशमी पहनते ही नहीं, दूसरा वो कहते हैं चुभता, गर्मी लगती है, पसीना आता है। तो अब आप अपने लिए सोचे इस आयत को, कि जब दी बेस्ट स्टैंडर्ड की चीज़ आपने चूज़ की दुनिया में, वो मार्क्स एंड स्पेंसर की है, वो फॉलीज की है, वो ए बी सी डी जो भी आप HM की कह लें, आप प्रादा कह दें, फलाना कह दें, जो मर्जी कह दें, अल्लाह कहता है यू ही है, कोई ख़ास तो नहीं है। यह है आयत, क्योंकि ये तो मच्छर का पारा। अल्लाह के नबी ने एक मौके पर साद बिन माज़, मेरे बड़े दिन से हदीस सुनाना चाह रही थी, अभी दिमाग में आ गई है। एक दफ़ा एक बादशाह के ख़जाने में से जो माले गनीमत आया ना, तो उसमें बड़े नरम रेशम के कपड़े थे, सॉफ्ट, तो सब ना ऐसे टच करने लग गए, जैसे कभी हम लोग भी कोई चीज़ देख के खुश होते, कितना सॉफ्ट है, कितना अच्छा है। तो जब अल्लाह के नबी ने अपने साहबा की ये दिलचस्पी देखी, तो आपने क्या कहा, जन्नत में साद बिन माज को जो रूमाल, हैंकरचिफ, टिश्यूज, नैपकिन, साद बिन माज को जो रेशम के रुमाल मिलेंगे, वो दुनिया के सारे रेशम, खैर मिन दुनिया व मा फीहा से बेहतर। तो नज़रें ऊपर लगाइए, स्टैंडर्ड अच्छा कीजिए, इम्पोर्टेड चीज़ें लें, और वो इम्पोर्टेड यूँ नहीं कि दुनिया के इम्पोर्टेड, वो ऊपर से इम्पोर्ट हो। जन्नत की चीज़ें क्या है, बाहर से आई हैं, ऊपर से आई हैं। ये बाहर की चीज़ों की एक दफ़ा आपको आदत पड़ गई, आप अपने मुल्क की देसी चीज़ें लेंगे ही नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा कर दे। और आप देखिए दुनिया में जब बंदा अच्छी चीज़ें लेने का आदी होता है ना, तो उसको अल्लाह से पता कैसे दुआ करनी चाहिए, अल्लाह जी आपको तो पता ही है मैं कितनी स्पॉइल्ड हूँ, अल्लाह जी मैं कितनी बिगड़ गई हूँ, अब मुझे वहाँ कपड़े वो ना दीजिएगा जो जहन्नम के, सूरत इब्राहिम में हम पढ़ के आए हैं पीछे, आपको याद हो ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह आयते ज़हन में रह जाती हैं। यानी अल्लाह कहते हैं कि जो जहन्नमी उनके कपड़े काट चुके हैं, कुत्तियत लम से आप आग के कपड़े हैं, अल्लाह जी मैंने नहीं पहनने, अल्लाह जी मैं तो बड़े अच्छे कपड़े पहनती हूँ, मुझे वहाँ ख़राब नहीं पहनने, अल्लाह जी मैं इतनी अच्छी चीज़ें इधर खाती हूँ, इतने अच्छे ड्रिंक पीती हूँ, मुझे नहीं जहन्नम का खौलता हुआ पानी और पीप और पस पी, इस तरह अल्लाह से लाड किया करें। ये लाड करने आ गए ना तो काफ़ी काम आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन लाड से पहले ताल्लुक। अब सुनिए, और अल्लाह के पास जो है वो तो इससे कई दर्जा बेहतर और पायदार है, और ये वो इनके लिए है जिनके, ये बात बड़ी मुश्किल है, जो अगली है, इनके लिए है जो ईमान लाए और सिर्फ अपने रब पर ही भरोसा रखते हैं। तीसरी खूबी, और कबीरा गुनाहों से और बेहयाइयों से बचते हैं, और गुस्से के वक्त भी माफ़ कर देते हैं, और अपने रब के फरमान को कबूल करते हैं, और नमाज की पाबंदी करते हैं, और इनका हर काम आपस के मशवरे से होता है, और जो हमने इन्हें दे रखा है इसमें से हमारे नाम पर देते हैं, और जब इन पर जुल्म ज्यादती हो तो वो सिर्फ बदला ले लेते हैं, और बुराई का बदला उस जैसी बुराई है, और जो माफ़ कर दे और इसलाह कर दे इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। फिलवाक़े अल्लाह ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता, और जो शख्स अपने मज़लूम होने के बाद बराबर का बदला ले ले, तो ऐसे लोगों पर इल्ज़ाम का कोई रास्ता नहीं, ये रास्ता सिर्फ इन लोगों पर है जो खुद दूसरों पर जुल्म करें और ज़मीन में नाहक फसाद करते फिरें, यही लोग हैं जिनके लिए दर्दनाक अजाब है, और जो शख्स सब्र कर ले और माफ कर दे, यकीनन ये बड़ी हिम्मत के कामों में से एक काम है। अल्लाह हमें इन सारी खूबियों से मुत्तसिफ कर दे। सब्र की बात हुई तो 6571 नंबर हदीस है सही मुस्लिम की, आयत सूरत शुरा की 30। इस पर यह हदीस है कि एक स्याह औरत नबी सल्लम की खिदमत में आई, कहने लगी मुझे मिर्गी आती है, यानी फिट्स पड़ते हैं, और इसकी वजह से मेरा सतर खुल जाता है, मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। आपने फरमाया अगर तू चाहे तो सब्र कर, जन्नत मिलेगी, और चाहे तो मैं तेरे लिए दुआ कर दूँ और तुझे इस मर्ज से निजात मिल जाए। उसने अर्ज़ किया मैं सब्र करूँगी। फिर इसने अर्ज़ किया कि मिर्गी के वक्त मेरा सतर खुल जाता है, बस ये ना खुला करे। तो आपने उसके लिए दुआ की, क्या पता चला कि बीमारी और मुसीबत में सब्र करने का बदला बहिश्त है। अल्लाह सारे बीमारों को सब्र भी दे और आफियत भी दे। फिर आगे 36 आयत पे देखिए, सहाबा कराम का तवक्कुल अल्लाह क्या था। इनको यकीन था कि जो चीज़ अल्लाह की राह में दे दी वही बचेगी। एक मौके पे एक बकरी का गोश्त आया, हज़रत आयशा ने सारा बांट दिया, थोड़ा सा दस्ती का गोश्त रख लिया, ये जो हम बोंग कहते हैं ना, दस्ती निहारी जिसकी बनती है इत्फ़, अल्लाह के नबी को ये पसंद था, शाने का गोश्त होता है। बहरहाल अल्लाह के नबी आए, कहा आयशा वो जो बकरी का गोश्त आया था उसका क्या बना, कहा सारी बांट दी, बस एक टुकड़ा रख लिया आपके लिए, बच गया एक टुकड़ा, बाकी चली गई। तो आपने उस जुमले को उल्टा किया, आयशा सारी बकरी बच गई और ये चला गया, ये आपकी शान थी। तो क्या पता चला, साहबा को यकीन था कि जो दिया है वो बच गया, वो प्रिजर्व्ड है, वो महफूज है, और जो हमारे पास है, हमारे हाथों में भी बरकती इतनी है। माइंदुल्लाह ही बाक और माइंदकुम यनफद, ये फानी ये फना ये ख़त्म होने वाला है, हमारे हाथों में इतनी बेबरकती है, और लेकिन हमारा दिल पता है कि क्या अपने हाथ में रखेंगे तो वो चीज़ महफूज है। दुनिया में बैंकों में अपना लाखों करोड़ों जमा करा देते हैं, नज़र भी नहीं आ रहा होता, लेकिन महफूज है जी, जब जाएंगे ले आएंगे। हालांकि वो आपको लेने नहीं देते, आपके भी पैसे कई शरायत से गुजारते हैं, संडे को छुट्टी नहीं देंगे, बाद में नहीं देंगे, और अल्लाह को दे के बंदे को यकीन ना आए, ये क्या बात हुई। साहबा को यकीन था कि मैं उधर जमा करा रहा, बुजुर्ग को याद कर लीजिए, हमें यकीन नहीं है। आपका माल चोरी हो गया बच गया, आपका माल ज़ाया हो गया बच गया, अल्लाह हमें सब्र दे दे, मजबूर नहीं, अल्लाह हमारे नुकसान पूरे कर दे, मजबूर नहीं, बस ये कर लीजिए। फिर इसी तरह वो अल्लाह और रसूल पर कामिल एतमाद रखते थे, दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह की तौफीक समझते थे, अल्लाह के वादों पर एतबार करते थे, अल्लाह ही पर तवक्कुल करके दीन पर इस्तकामत इख्तियार करते थे। अल्लाह हमें इस सब की तौफीक दे। फिर आयत 36 दुनिया की बेसुबाती पे है, रिवायत अल्लाह के नबी से कि अल्लाह की कसम दुनिया आखिरत के सामने ऐसी है जैसे तुम में से कोई ये उंगली डाले, कहते हैं ऐसे दरिया में डाले तो बताओ कि उंगली पर कितना पानी लगा, तरी कितना, जिस में भी वन स्टेन भी नहीं, किया आगे एक ड्रॉप, तो जितना पानी उंगली पे लगा वो दुनिया है और पीछे आखरत है। ये नस्बत दुनिया को आखरत से है, दुनिया फानी है, आखरत दायमी है और इससे भी कम है। अल्लाह हमारी तरजीहात बदल दे, यहाँ गुजारे का रख लें, एक्स्ट्रास वहाँ जमा करा दे। यही है ना सेविंग अकाउंट, एक करंट अकाउंट एक सेविंग, करंट में डे टू डे खर्चे जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल के पैसे, सेविंग या फ्यूचर प्लानिंग, आप भी अपने आज से दो अकाउंट बनाएं, एक करंट अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट, फिर देखिए वहाँ आपको जो कुछ मिलने वाला है उसकी को आप खुद ही नहीं यकीन कर सकेंगे कि अल्लाह इतना तो हमारे पास था भी नहीं जो वहाँ दिख रहा है। फिर आगे देखिए आयत 37 पे एक हदीस है हज़रत अनस से, बुखारी की रिवायत 6031, अल्लाह के नबी ना गाली देते थे, ना बदगो थे, ना बदखू थे, और ना लानत मलामत करते थे, अगर हम में से किसी पर नाराज़ भी होते तो इतना फरमाते इसे क्या हो गया, दैट्स इट, इसके हाथ खाक आलूद हों। तो बहरहाल शूरा का लफ्ज़ आया है मशवरा, इसको भी समझ लीजिए क्योंकि नाम है सूरत का, मशवरा करना बहुत अहम है। हमने पीछे भी इस पर थोड़ी बात की थी एक बारे में शायद आले इमरान के साथ। साहबा करम हर अहम काम बाहमी मुशावरत से करते थे, अपनी राय को हरफ आखर नहीं समझते थे। हज़रत उमर ने अपनी खिलाफत में बाकायदा तौर पर मजलिस शूरा कायम की। हज़रत उमर ने आखिरी अय्याम में अमरे खिलाफत सौंपने के लिए 6 आदमी मुशावरत के लिए चुने थे, यानी जब इनको तीर लग गया तो इन्होंने फिर 6 लोग चूज़ किए थे कि तुम अगला खलीफा चूज़ करो। फिर आप देखिए कि आयत 37 से 41 में सहाबा कराम की कुछ काबिले तकलीद सिफात है, यानी जिस पे हम और आप रश करके उनको फॉलो कर सकते हैं। नंबर एक, कबीरा गुनाहों और बेहयाई से बचना, गुस्सा आ जाए तो दरगुजर करना, रब की कामिल इताअत करना, कामों में आपस में मशवरा करना, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करना, जालिम के जुल्म को रोकना, दूसरों की ज्यादती को माफ़ कर देना और बदला लेने की कुदरत के बावजूद माफ़ कर देना। हमने क्या सीखा? ये सब कुछ करना है जो पढ़ा है अभी तक। इसके अलावा अल्लाह ताला के सामने आजजी इख्तियार करनी है, पूरा ईमान रखना है कि अल्लाह के मुकाबले में कोई हामी और नासिर ना बने, सब्र करना है, शुक्र करना है, गुनाहों और बेहयाई के कामों से बचना है, गुस्सा आ जाए तो दरगुजर करना है। आगे रुकू नंबर 6 है, 44 से 53, अपने रब की पुकार पे लब्बाई कहो। अब जब उम्रे पे जाओ या हज पे जाओ, नहीं, हर हुक्म पे। वमई युद्लिल्लाहु फमा लहू मिन वली, और जिसे अल्लाह पे कहा दे इसके बाद इसका कोई चारा सास नहीं, और तू देखेगा कि जालिम लोग अजाब को देख कर कह रहे होंगे कि क्या वापस जाने की कोई राह है, और तू इन्हें देखेगा कि वो जहन्नम के सामने ला खड़े किए जाएंगे, मारे जिल्लत के झुके जा रहे होंगे और कनखियों से इधर उधर देख रहे होंगे, आंखें चुराएंगे, यानी ईमानदार साफ कहेंगे कि हकीकी नुकसान वाले तो वो हैं जिन्होंने आज कयामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान में डाल दिया। याद रखो कि यकीनन जालिम लोग दायमी अजाब में हैं। कुछ गौर किया आपने इस आयत पे? खुद भी डूबे, अपने घर वालों को भी डुबो दिए। इसमें हर वो शौहर है जो बीवी को गुनाह पे माइल करे, और हर वो बीवी है जो शौहर को हराम पे माइल करे, और हमारे बच्चे अगर हमारे गुनाहों के सरिया बन रहे हैं या बच्चों की खुशी के लिए अल्लाह को नाराज करें, ये आयत उन सब के लिए है। क़यामत के दिन खुद भी डूबे और अपने घर वालों को भी डुबो दिया। इनके कोई मददगार नहीं जो अल्लाह से अलग इनकी इमदाद कर सके, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे इसके लिए कोई रास्ता नहीं। अपने रब का हुक्म मान लो, इस्तजीबू, कबूल कर लो, इससे पहले कि अल्लाह की जानिब से वो दिन आ जाए जिसका हट जाना नामुमकिन है। तुम्हें इस रोज़ ना तो कोई पनाह की जगह मिलेगी, ना छुप कर अनजान बन जाने की, यानी ऐसे ही तुम इधर उधर देख कर बच नहीं जाओगे उस दिन। अगर ये मुंह फेर लें तो हमने आपको इन पर निगेबान बना कर नहीं भेजा, आपके जिम्मे तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है। हम जब कभी किसी इंसान को अपनी मेहरबानी का मजा चखाते हैं तो वो इस पर इतरा जाता है, और अगर इन्हें इनके अमाल की वजह से कोई मुसीबत पहुंचती है तो बेशक इंसान बड़ा ही नाशुकरा है। आसमानों की और ज़मीन की सल्तनत अल्लाह ही की है, वो जो कुछ चाहता है पैदा करता है, और जिसको चाहता है बेटियां देता है, और जिसे चाहे बेटे देता है, या इन्हें जमा कर देता है बेटे भी और बेटियां भी, और जिसे चाहे बांझ कर देता है। वो बड़े इल्म वाला और कामिल कुदरत वाला है। नामुमकिन है कि किसी बंदे से अल्लाह कलाम करे। यहाँ आप नोट कीजिएगा वही की मुमकिन सूरतें, जिस जिस तरीके से नबी पे वही आती थी वो सारी इसमें जमा है। क्या है? नंबर एक, अल्लाह कलाम करे मगर वही के जरिए से, या पर्दे के पीछे से, या किसी फरिश्ते को भेजे और वो अल्लाह के हुक्म से जो चाहे वही करे, बेशक वो बरतर हिकमत वाला है। इसी तरह हमने आपकी तरफ अपने हुक्म से रूह को उतारा है जिब्राइल। आप इससे पहले ये भी ना जानते थे कि किताब और ईमान क्या चीज़ है। आपको पता था ये पढ़ने से पहले कि कुरान ये चीज़ है, ईमान की ये लज्जत है? आप देखिए, आप ईमान ईमान करते रहते हैं हर वक्त। ज़रा सा एक मिसाल दूँ आपको, रिलैक्स हो जाएं। आप कहते ईमान बड़ा अच्छा, ईमान का फल मीठा, ईमान बड़ा टेस्टी, ईमान ईमान ईमान। अब कोई आया ईमान पे नया बंदा आप में से जो पहली दफ़ा दौरे कुरान कर रहा है, जिसमें नया नया ईमान आ रहा है, अब उसके तो आंसू ही नहीं ख़त्म हो रहे, जिंदगी जी रहे, घर वाले परेशान। वो कहता ये पता नहीं क्या यहाँ आकर बैठी रहती थी और ईमान ईमान के गुण गाती थी, मेरी तो जिंदगी जी रहे ना। तो मैं ऐसे सारे साथियों को जो कुरान की तरफ नए नए बढ़ रहे हैं, ये ईमान के भी इब्तदाई मंजिलों पे हैं, एक मिसाल देती हूँ। आम किसको अच्छे नहीं लगते? सबको अच्छे लगते हैं। कोई इतनी तारीफें करे, और वो भी फिर पाकिस्तानी आम, और वो भी अनवर अटोल, और वो भी जो फ्रेश बिल्कुल जो के सीज़न का है, कोई कोल्ड स्टोरेज का नहीं। यहाँ तो बहुत महंगा भी आम खाते होंगे तो आप 200-300 रुपये किलो खाते होंगे, ऐसे ही है ना? बाहर की दुनिया में आपको पता है कि एक आम कितने कम खाते हैं? बताओ, तकरीबन 2,000 रुपये का एक आम जी, लेकिन बाहर जाके उसकी भी इज्जत बन गई। फिर भी हम पाकिस्तान का ही खाते हैं, इतना मज़े का आम है। अब आम आम आम, किसी ने कहा अच्छा ज़रा चखू तो सही। गए किसी दरख्त के पास, अभी भी मौसम नहीं है आम पकने का, एक कैरी लगी हुई है, कैरी उतार के ले आए। अम्बी बोलते हैं पंजाबी में इसको। अच्छा अब आपने उसको कैरी दे दी, अब वो बड़े मजे में मीठा खुशबू। अच्छा अब उसने जरा से छुरी से काट के मुंह में रखी तो क्या करेगा, हाय खट्टी कड़वी ये क्या, ये तो नहीं अच्छी। अब वो आपको सलवाते सुनाएगा, आप पता नहीं क्यों आम की तारीफें करती रहती हैं। मेरा तो मूंछ खिंच गया युवा, आप तक खबर पहुंच गई, आप क्या कहेंगे। सब्र कीजिए, अभी आम कच्चा है, कच्चे ईमान में कड़वाहट होती है, आंसू ही नहीं खत्म होते रो रो के, हाय 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 मेरी तो जिंदगी में अकेली रह गई, मेरी दोस्तें छोड़ गई, अब तो मुझे पता ही नहीं चलता वो पार्टी कर लेती हैं, मुझे बाद में तस्वीरों से पता चलता है। अकेले तन्हाई, याद रखिए हिजरत और तन्हाई साथ साथ। लेकिन अपने आंसू पोंछ लें, इस ईमान को पकने दें, और एक ईमान पकता है दरख्त के साथ, चले आम पके दरख्त पे उसका टेस्ट, और कच्ची गिरी हुई केरियाँ जो आंधी तूफान से गिरी उनको किसी बड़े अच्छे डब्बे में वो कागज़ डाल डुल के कर दें, टेस्ट का फ़र्क होता है। बस एक बात आज लिख लें, व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बहार, आपने इंशाल्लाह ईमान का वो फल बनना है जो दरख्त पे लग के पक्का होगा, और ये दरख्त का लगना ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन के साथ कुरान को पढ़ना होता है, खुद से इधर पढ़ उधर पढ़, ये सुन वो सुन, वो फिर केरी आम तो बन जाती है, टेस्ट नहीं आता। मैंने कभी ऐसे बंदे को कोई बड़ा काम करते नहीं देखा या दूरस काम करते नहीं देखा, जोश जज्बे में बहुत कुछ करता है लेकिन बड़े काम नहीं होते। और कितने काम आपके इस ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन काम के आगे शुरू होकर बंद भी हो जाएंगे, जैसे कई दुकानें खुली बंद हो गई और बड़ा स्टोर चलता रहा। तो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़कर जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें दूसरों को भी मदद मिलती है, कोई गिर रहा है, कोई थाम रहा है, कोई पकड़ रहा है, तो ईमान के सफर में एक दूसरों को पकड़ा करें। चलिए अब तो मज़ा आ गया आम की बात सुनकर, तो क्या कहा सुनिए कि आपको क्या पता किताब और ईमान क्या चीज़ है। कभी आपको कोई बात ना समझ आए ना तो आप अपने आप को इस तरह तसल्ली दिया करें, अभी मैं बच्ची हूँ आगे जाऊँगी ना तो पता चल जाएगा, अभी तो मैंने सिर्फ दौरे कुरान किया है और वो भी अभी पूरा नहीं हुआ, देखना ज़रा समय सबीलुल जन्ना कर लूँ फिर क्या होगा, अच्छा मैं ये करूँ मैं वो करूँ, तो आप देखिए इस तरह बहलाते रहें और फिर देखिए आपकी मिठास, और आप फिर दूसरों को सर्व करेंगे इंशाल्लाह ताला आमों की तरह, जैसे आम बेचारा हर जगह अपने आप को पेश करता है कि मेरे से मिल्क शेक बना लो चटनी बना लो, और न जाने हम उस गरीब का क्या कुछ बनाते हैं, उसमें भी मिर्चें डालते हैं, क्या बात है हमारी। क्यामत के दिन अगर ये बेजुबान फ्रूट बोल उठे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब सुनिए है क्या फिर किताब और ईमान, एक जुमला, लेकिन हमने इसे नूर बना दिया। ये ईमान और किताब नूर है, अल्लाह जल फी कल्बी नूरन वफ़ी बसरी नूरन वसमी नूरन, दुआ करे अल्लाह मेरे सीनों को नूर वाला बना दे, नूरानी बना दे, इसके ज़रिए से अपने बंदों में जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं, हर बेशक आप राह रास की रहनुमाई कर रहे हैं, इस अल्लाह की राह की जिसकी मलकियत में आसमान और ज़मीन की हर चीज़ है, अगर हो सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं। क्या सीखा, अल्लाह का पैगाम सारी इंसानियत तक पहुँचाना है, बोलिए इंशाल्लाह, गुमराह नहीं होना, ना शुक्री नहीं करनी, ना कदरी नहीं करनी, अल्लाह की किताब से हिदायत हासिल करनी है। मुहासबा कर लेते हैं क्या मेरे अंदर सहाबा जैसे औसाफ हैं, क्या मैं अपने अहम कामों में मशवरा करती हूँ, क्या कभी बदला लेने की कुदरत के बावजूद भी मैंने दूसरों को माफ़ किया तो खूबसूरत सी सूरत शूरा पूरी हुई।